ये पोंग माने क्या होता है? है हाँ पोंग तो है, काली पोंग है, लेकिन पोंग होता क्या है?
ये चेंज हुआ है बाबा, ये बोंग है, लेप्चा भाषा में बोंग का एक पेड़ का नाम है। बोंग पेड़ को बोंग बोलते हैं लेप्चा भाषा में। उसी को बाद में जब ब्रिटिश आए उसके बाद में पोंग हुआ। इंग्लिश में जब लिखते हैं पोंग POONG लिखते हैं, जब नेपाली में यहाँ पे लिखते हैं तो बोंग लिखते हैं। कालीबोंग बोंग का अर्थ पेड़।
हाँ जी
स्थाई ज्ञान मैंने क्या स्थाई ज्ञान
स्थाई
माने शिव बाबा के अंदर जो ज्ञान है वो सदैव सतो प्रधान स्थाई ज्ञान रहता है। और दूसरी जो आत्माएं हैं उनका ज्ञान कभी सतो प्रधान होता है और बाद में तमो प्रधान बन जाते हैं, तो ज्ञान भी उनका तमो प्रधान बन जाता है। जैसे द्वापर के आदि में कहते हैं व्यास के द्वारा शास्त्र लिखे गए, तो बाबा कहते हैं शास्त्र जो द्वापर के आदि में लिखे गए थे उनमें सच्चाई थी। अभी जो शास्त्र लिखे जा रहे हैं, जो भी उनकी व्याख्या लिखी जा रही है, क्या उनमें सच्चाई है? नहीं है। तो स्थाई कहां रहा ज्ञान? मनुष्यों का ज्ञान अस्थाई है और भगवान का ज्ञान स्थाई है। और
दादी लोग आंख में सुरमा लगाती
है
ना? दादी लोग आंख में सुरमा लगाती है ना?
हाँ दादी दीदी ब्रह्मा बाबा
हाँ लगाते ना?
हाँ सुरमा लगाते थे।
दृष्टि देते हैं,
दृष्टि देते थे ब्रह्मा बाबा
जी। हाँ बोलते कि मनुष्य को चेंज ही करते हैं दृष्टि देके।
दृष्टि देके चेंज कर देते हैं, देवता बना देते हैं?
नहीं नहीं उनको मतलब काबू में कर लेते हैं।
तो यही तो बताया, वो काला कोयला लगाते हैं, अंजन नहीं लगाते, वो सुरमा नहीं लगाते, वो काला सुरमा लगाते हैं, काला बना देते हैं। और शिव बाबा गोरा बना देते हैं। हाँ
बाबा वो जो विष्णु का चाल अलंकार दिखाया है उसमें बाबा ने ये बताया कि ये अलंकार वास्तव में तुम्हारे हैं। तो ये चाल अलंकार में जी वो जो सृष्टि चक्र का जो चलाते हैं उसका अर्थ मतलब 84 का चक्र हम लोग चलाते हैं ये समझ में आया। और वो कमल फूल है जो हम लोग कीचड़ के दुनिया में रहते थे हम लोग न्यारा और प्यारा होकर के रहने का है। और जो शंख ध्वनि है वो हम लोग ज्ञान का शंख बजा रहे हैं। लेकिन वो जो गदा है ये किस अलंकार का प्रतीक है, किस अलंकार धारण की गदा?
हर बात में ड्रामा आगे कर दो, ये ज्ञान का गदा है, सब बातें खत्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वैसा जो कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो क्यों हुआ? ड्रामा।
तो ये गदा है वो ड्रामा का प्रतीक है।
ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, कोई बात समझ में नहीं आती थी तो ड्रामा।
हाँ बाबा ने बोला है ना पहले काली माँ आएगा तब लाली माँ आएगा ज्ञान सूर्य आएगा।
हाँ सवेरे को जब सवेरा होता है तो सवेरा होने से पहले क्या होता है? काला काला अंधेरा होता है। पूरब में भी देखो तो क्या होगा? काला काला अंधेरा होता है। तो पहले काली माँ फिर उसके पीछे से सूर्य होता है कि लाल 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 डान होता है, है? लाल लाल होता है वो है लाली माँ। काली माँ कौन हुई और लाली माँ कौन हुई? कौन हुई काली माँ? अरे अम्मा को ही भूल गए हाँ, जगदम्बा माँ काली का रूप धारण करती है तो वो हो गई काली माँ। माना घोर अज्ञान का अंधकार फैलाने वाली, सारी दुनिया उस अज्ञान की चपेट में आ जाती है। 500-700 करोड़ की दुनिया भी ज्ञान की चपेट में, अज्ञान की चपेट में आ जाती। जो ज्ञान में चलने वाले एडवांस वाले हैं वो भी अज्ञान की चपेट में आ जाते। उनके अंदर जो ज्ञान सरोवर मनन चिंतन मंथन से ज्ञान लहराता है ना, सरोवर में, बुद्ध रूपी सरोवर में, वो ज्ञान सरोवर भी छोड़ देते हैं। अद्वैतवाणी में क्या बोला, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को, जिनकी बुद्धि में हर समय ज्ञान ही टपकता रहता है उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ने, सबको भागना पड़ेगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा हैं? ऐसा क्या हो जाएगा जो सबको छोड़ना पड़ेगा? अरे हैं? अरे ये जो झूठे गुरु लोग बैठे हैं ना, सफेद कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, ये क्या करते हैं? ये गुरु लोग ऐसा अज्ञान अंधकार, ऐसी ग्लानी फैलाते हैं दुनिया में, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में, इतना अज्ञान फैलाते हैं कि आस पड़ोस वाले सब क्या हो जाएंगे, आने उनको निश्चय हुआ ही कहां, अभी भी अनिश्चय में है। फिर वो विकराल रूप धारण करेंगे हमारी खिलाफत में और कहेंगे निकलो बाहर, हम तुम्हें अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में नहीं रहने देंगे, कहर ढाएंगे, आग लगाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, जिनकी बुद्धि में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान सरोवर में ही डुबकी लगाते रहते हैं, उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान के ऊपर अनिश्चय आ जाएगा। और जो मधुवनों में रह रहे हैं वो सोचते हैं हम तो भगवान के घर में रह रहे हैं, हमें कौन नीचे ऊपर कर सकता है।
बाबा छोड़ के कहाँ जाना
है? क्या
जब गीता
पाठशाला
छोड़नी पड़ेगी तो
कहाँ
जाएंगे?
कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? जब ये दुनिया जब छोड़नी पड़ती है तो कहाँ जाते हैं?
बाबा
के पास जाते हैं, वो तो आत्मा बन के जाते हैं, जाते हैं ना। और अभी अभी कहाँ जाएंगे? वो तो निराकारी धाम है। इस दुनिया में कोई साकारी धाम है? माउंट आबू है, वो बाप का घर है, वहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे? एक ही ट्रेन चलेगी, जो निकल गए सो निकल गए, जो रह गए सो रह जाएंगे।
ये कब तक होगा?
कब तक होगा? क्या पता कल ही शुरू हो जाए, बोरिया बिस्तर बांध लो।
बाबा उस समय डर के रहना चाहिए, लोगों से फाइट करके रहना चाहिए तुरंत, मतलब उस समय थोड़ा डर करके रहना चाहिए, लोगों से फाइट करके रहना चाहिए या तुरंत निकल जाना चाहिए?
बाबा ने कब कहा किसी से फाइट करो?
नहीं मतलब डर के रहना चाहिए, सभी लोगों का सामना करते हुए रहना चाहिए।
बाबा ने कभी कहा?
तो क्या करना चाहिए सब?
मीठे बनो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और कम बोलो।
बाबा ने बोला तो शंकर ने, शंकर के दादी मूछ है वाला, शंकर संसार सब जबाने वाला
है,
वो शंकर का दादी है ना, दादी मूछ वाला शंकर ने सारा संसार को चबाने वाला है। बाबा बोला
शास्त्रों में दिखाया है, गीता में ऐसा श्लोक आए हैं, दंष्टा करालान चते मुखाने, माने भगवान जब विकराल रूप धारण करते हैं तो दिखाते हैं कि सारी दुनिया उनके बाढ़ों के बीच में चबाई जा रही है। तो ये दाढ़ है क्या है? जो एटम बम बने हुए हैं ना आकाश में भी तैर रहे हैं, जमीन के अंदर है, सागर के अंदर है, वो बॉम्ब तैर रहे हैं दुनिया को भस्म करने वाले, वो ही भगवान की दाढ़ है हो गई। वो फटेंगे और सारी दुनिया उन दाढ़ों के बीच में चबाई जाएगी।
बाबा हाँ। भक्ति मार्गों में माँ दुर्गा दुर्गा के दो आठ आठ रात नौ हाथ दिखाते, कौन कौन सहयोगी आत्मा?
नौ हाथ दिखाते कि आठ हाथ दिखाते?
नौ हाथ
आठ
आठ
हाथ दिखाते, कौन 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 सहयोगी
है? आठ हाथ का मतलब ये है कि जो दुर्गा है वो चार आत्माएं विशेष हैं, युगल जोड़ी, दाएं हाथ की और बाएं हाथ की। बाया हाथ तो स्त्रियों का होता है, स्त्री को कहाँ बैठाते हैं? शादी होती है तो शादी होने के बाद किधर बैठाते हैं? वाम अंग में, वो स्त्री के हाथ हो गए और दाएं हाथ हो गए पुरुष के। तो दोनों मिलाकर के आठ हाथ दिखाते हैं, माना जो देवियां हैं उनमें चार हैं रुद्रमाला की और चार हैं विजयमाला की। विजयमाला की है माना स्त्री स्वभाव संस्कार की, और जो पुरुष स्वभाव संस्कार वाले हैं वो रुद्रमाला के। तो चार और चार कितने हो गए? सहयोगी, सहयोगी हाथ आठ हो गए।
बाबा ये बाबा के मन में आया कि सुदर्शन चक्र चलाओ, तो ये ज्ञान में चलने वाले लोग सुदर्शन चक्र चलाने के लायक कब बनेंगे?
अरे बनेंगे कि बन रहे हैं?
बन रहे हैं। जो बेसिक वाले हैं वो तो बेसिकली सुदर्शन चक्र घुमाते, सत्युग रेता द्वापर कलयुग संगम, सत्युग रेता द्वापर कलयुग संगम, ये रट्टा लगाते हैं। और जो गहराई में जाने वाले हैं वो ज्ञान की ऐसी गहराई में जाते हैं कि अपनी आत्मा के 84 जन्मों को भी एक दिन पक्का क्लियर कर लेंगे। किस 5000 वर्ष के चक्र में हम 84 जन्म कैसे कैसे लेंगे, कहां कहां हमको पार्ट बजाना है, किस धर्म में जाकर के पार्ट बजाना है, वो भी उनको क्लियर हो जाएगा। अगर राम वाली आत्मा को क्लियर हो सकता है तो दूसरों को नहीं क्लियर हो सकता? दूसरों को भी होगा। और आत्मा एक्टर है ना, आत्मा क्या है? एक्टर ना। एक्टर क्या करते हैं? रंगमंच पे कपड़े बदलते रहते हैं, पार्ट बजाते रहते हैं। कभी कोई पार्ट बजाया, स्त्री चोले का पार्ट बजाया, कभी पुरुष चोले का पार्ट बजाते हैं, कभी क्या राजा का पार्ट बजाते हैं, कभी भिखारी का पार्ट बजाते हैं। तो चोले बदलते हैं ना, कपड़े बदल देते हैं ना, तो हम आत्मा भी पार्ट धारी हैं। हमने कितने चोले बदले? 84। अच्छा दूसरे धर्म की आत्मा वो 84 जन्म नहीं लेती है, कम जन्म लेती है तो कम चोले बदलती है। ऐसे हमने चोले बदले हैं, वस्त्र बदले हैं। तो ये जो वस्त्र हमने बदले हैं उन वस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए कि अभी हमें भिखारी का पार्ट बजाना है तो भिखारी कैसे कपड़े पहनता है, राजा का पार्ट बजाना है तो राजा कैसे कपड़े पहनता है। पार्टधारी को ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। और पार्टधारी को रंगमंच पर खड़ा हो जाए और अपने पार्ट का ज्ञान ही नहीं है, हैं? यही पता नहीं है कि हम राजा का पार्ट बजाने आए हैं और कफनी पहनी हुई है, तो ऐसे पार्टधारी को तो बेवकूफ कहा जाएगा। तो वास्तव में हम आत्मा, अगर ज्योति बिंदु आत्मा हम पार्टधारी हैं तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि 84 जन्मों में हमने क्या क्या और कैसे कैसे पार्ट बजाए। तो हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हुए। अगर नहीं ज्ञान है तो ऐसे पाटदारी को बेवकूफ कहा जाएगा, कहा जाएगा या नहीं? बेवकूफ पाटदारी हुआ, अपने पार्ट कोई नहीं जानता, रंगमंच पर आके खड़ा हो गया। और
बाबा ये भारत के राष्ट्रीय गान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता लिख दिया
है,
तो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अभी पाठ चल रहा है क्या कहीं गान में?
जिसने लिख दिया वो भारत भाग्य विधाता, जिसने लिखा है वो जानने वाला भी होना चाहिए ना। तो कौन है भारत भाग्य विधाता? भारत के भाग्य को जगाने वाला बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या ऊपर चले गए? वो ही तो इसी दुनिया में है।
बाबा
एक मिनट,
बाबा ने बोला नहीं, बाप का जब जन्म होता है रावण का भी साथ में जन्म होता है।
हाँ हाँ सही बात है, जब बाप आते हैं तो संगम युग में बाप आते हैं। संगम युग में जब बाप आते हैं तो किस में आते हैं? हैं? कृष्ण वाली आत्मा में पहले आते हैं, तो कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? राम वाली आत्मा में आते हैं, और जो राम वाली आत्मा में जब आते हैं तब सृष्टि का अंत होता है या मध्य होता है या आदि होता है? आदि होता है। नई सृष्टि का आदि होता है नहीं? तो पुरानी सृष्टि का अंत होता है ना, तो पुरानी सृष्टि के अंत में सारी आत्माएं तमो प्रधान बन जाती है ना, और राम वाली आत्मा भी तमो प्रधान बन जाती है। तो जो और आत्माएं तमो प्रधान बनती हैं, उन तमो प्रधान आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन होता है? राम वाली आत्मा। राम ही क्या बनता है? रावण। तो मैं किस में आता हूँ? है सबसे जास्ती पति तन में आता हूँ ना, तो जो सबसे जास्ती पति तन है वो ही रावण हुआ। राम ही क्या बनता है? और कृष्ण ही कंस बनता है।
पूजा गर्दाखेरि मालाहरू जप्नु हुँदैन, पूजा करते समय नै वो माला फिर्ने चाहिए बोल रहे हैं।
पूजा करते हैं आप, हाय से हाथ घुमाते हैं तो आरती करते हैं, उस समय माला थोड़े ही घुमाते हैं। आप माला की बात कर रहे हैं, पूजा करते हैं तो माला के मणके घुमाते हैं। वो माला के मणके श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार है, वो श्रेष्ठ आत्माएं नंबरवार 108 हैं, जिन 108 आत्माओं को भगवान ने आकर के श्रेष्ठ बनाया, इसलिए श्री श्री 108 कहा जाता है। माना उन 108 आत्माओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? ऊपर फूल दिखाते हैं वो शिव बाबा हुआ। तो जो माला घूमते हैं, माला घूमती है तो उन 108 आत्माओं को राम 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 कहकर के याद करते हैं। हाँ
बोल रहे ना जी कि उनके घर में वो उनको काली माता को विजन, वो काली को पूजा करते थे, तो वो काली माँ आके अपने आप घंटी बजा के ऐसे ऐसे कुछ करते थे।
काली माँ आकर घंटी बजाती है?
बोल रहे
इनको दिखाई पड़ता होगा।
देखो
काली माँ और गोरी माँ अभी इन दिनों में कहाँ से आ जाएगी? है
वो क्या है बोल रहे बाबा, ऐसा होता था
इनका अपना अनुभव है, स्वप्न होता है जैसे किसी को, ऐसे इनका साक्षात्कार हो गया। जो काली की पूजा करते हैं उनको काली का साक्षात्कार हो जाता है, हनुमान की पूजा करते हैं उनको बंदर का साक्षात्कार हो जाता है, जो गणेश की पूजा करते हैं उनको हाथी का साक्षात्कार हो जाता है। तो आप महाकाली की पूजा करते हैं तो आपको महाकाली दिखाई पड़ गई।
बोले ना जो अभी भी उनके कानों में चूड़ियां खनक चूड़ी की आवाज
आपको जगाती है आकर के, चूड़ियां खनका खनका कर जगो। और
वो बाबा ने कई बार वो अष्टरत्न के बारे में बताया ना, उनकी विशेषता के बारे में, अष्टरत्न जो होते हैं विशेषता के बारे में बताया।
हाँ जी हाँ जी, अष्टरत्न होते हैं एक दूसरे से कम वैल्यू वाले
जी। और वो जो 108 है ना बाबा, उनके विशेषता क्या है बाबा?
100 में 8 को ऐड कर दिया तो 108 हुए। क्या
मतलब उनकी विशेषता है क्या है?
हाँ, वो सबसे श्रेष्ठ हैं जो 8 हैं, और उनके मुकाबले जो 100 हैं वो नंबरवार है। जो 8 हैं वो सारे ही सूर्यवंशी हैं, और जो 100 हैं वो सब नहीं है सूर्यवंशी है। दूसरे दूसरे धर्म का भी उन्होंने लबादा ओढ़ रखा है, छिलका। जैसे बीज होते हैं ना, तो कोई बीज के ऊपर मोटा छिलका होता है, कोई बीज के ऊपर पतला छिलका होता है, तो ये लबादा ओढ़े हुए हैं। दूसरे दूसरे धर्म का भाव स्वभाव संस्कार का लबादा चढ़ा हुआ है बीजों के ऊपर। अब जिनका मोटा छिलका होता है उनको धर्मराज के ज्यादा डंडे लगते हैं। डंडे मारने से बीज का छिलका उतरता है ना। हाँ, और किन का बहुत अच्छा महीन छिलका होता है। ज्ञान सूर्य आकर के ज्ञान के डंडे मारता है तो वो छिलका उतर जाता है। ज्ञान की बातें तो शिव बाबा की मीठी मीठी होती है ना, उन मीठी मीठी बातों को सुनकर के ही उनका छिलका उतर जाता है। जब ज्ञान चंद्रमा अस्त होगा और ज्ञान सूर्य प्रकट होगा तो नंबरवार 10 साल के अंदर वो सभी प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
जो 8 नारायण है, जो एक नारायण होता है ना, वो एक नंबर एक नारायण है,
एक नारायण
जो 8 नारायण में तो एक नारायण वो चंद्रवंशी में भी शामिल करते हैं, सूर्यवंशी में भी शामिल करे।
8 नारायण है सूर्यवंशी, और जो उनमें अंतिम नारायण है वो लोन लेके राजा ही चलाता है।
चंद्रवंशी में भी शामिल होते हैं वो, और सूर्यवंशी भी होता है।
नहीं
बाबा ने बताया मुरली में,
नहीं वो चंद्रवंशी में शामिल तब हो जाता है जब उसके ऊपर लोन ज्यादा चढ़ जाता है, तब वो नीचे गिर जाता है। और लोन लेके राजा ही चलाई तो क्या चलाई। और
अच्छा बाबा, सत्य युग और त्रेता युग में जो आत्मा नहीं आते हैं,
नहीं आती है,
जो द्वापर युग से आते हैं,
आती है,
वो आत्मा सत्य और त्रेता में कहाँ पर रहते हैं?
है?
सत्य युग और त्रेता में वो आत्माएं कहाँ पर रहते हैं?
सत्य युग त्रेता में आती ही नहीं तो प्रकट कहाँ से होंगी?
कहीं तो रहते होंगे ना,
परम धाम में।
परम धाम में रहना तो असह्य है ना, परम धाम में रहना तो असह्य है ना।
असह्य
अच्छा,
अच्छा
है ना,
अच्छा है, कम जन्म लेना अच्छा है, कीड़ा मकोड़ा बनना अच्छा है। जैसे पतंगे होते हैं ना दीपावली पर, सुनो सुनो, जो दीपावली पे पतंगे आते हैं ना, तो पतंगे रात को आते हैं और सवेरे को सब मर जाते हैं। तो एक आधा जन्म लेना अच्छा है इस सृष्टि में। जो लास्ट में आत्माएं आएंगी वो श्रेष्ठ होंगी, या जो सत्युग के आदि में आएंगी वो श्रेष्ठ होंगी? वो देव आत्माएं हैं, वो 16 कला संपूर्ण सुख भोगती हैं। जो कलयुग के अंत में आत्माएं उतर रही हैं अभी, उनको तो कलाहीनता वाली आत्माएं हैं। वो क्या सुख, सुख क्या होता है जानती ही नहीं, असली सुख क्या होता है। तो परम धाम में पड़ा रहना अच्छा, या इस सृष्टि पर आकर के जीवन मुक्ति भोगना अच्छा, जीवन में रह करके सुख भोगना अच्छा, या जीवन ही खत्म हो जाए न सुख भोगे न दुख भोगे वो अच्छा। अच्छा सोते रहो, गहरी नींद सो जाओ, इनको गहरी नींद वाली ऐसी गोलियां दो जो बिल्कुल सो ही जाए। ऐसा चाहते हैं आप?
नहीं चाहते।
बस सबको ये चाहता है कि हमारी जिंदगी भी रहे और जिंदगी में हम सुख भोगे, दुख दुख न भोगे, यही हमारी सबकी चाहना है। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि हम हमेशा नींद में बने रहे, सुसुप्ति में चले जाए। परम धाम में जाना माना जड़वत, आत्मा की चैतन्यता ही जैसे खत्म हो जाती है, न वहां सोचना, न वहां कुछ करना, न कुछ धरना, क्या फायदा?
मतलब कोमा में बैठना जैसे
हो, कोमा में जैसे हो गए।
बाबा बोलते हैं वहां तो परम धाम में रहते हैं जो आत्मा, वो पवित्र होते हैं।
अपवित्र कब होते हैं? शरीर धारण करेंगे तब अपवित्र होंगे कि बिना शरीर धारण किए अपवित्र हो जाएंगे?
शरीर धारण करने
का, शरीर धारण करते हैं तो पहले सुख भोगते हैं, बाद में शरीर के सुख भोगते भोगते आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, और वहां तो शरीर है ही नहीं, तो काहे का सुख और काहे का दुख। और
बाबा हनुमान को ज्ञान गुण सागर कहते हुए भी इनको ये पशु की तरह जो शरीर दिखाया है वो क्यों है ऐसा?
वो बंदरों का हेड है इसलिए। बंदर विकार में जाने वाले होते हैं ना, बड़े कामी होते हैं। बंदर का काम पाना देगा, काम विकार एकदम पेड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा और वहां बंदरिया को लेके काम विकार भोगेगा, इतना बेशरम होता है। आज के आदमी भी देखे बेशरम होते जाते हैं कि नहीं है? हाँ, विदेशी सबसे ज्यादा देखने में आएंगे, यहाँ तो बहुत सैलानी घूमने के लिए आते हैं, नेपाल में ढेर सारे आते हैं, बस गले में हाथ डालेंगे एक दूसरे को चुम्बा चुम्बी करते रहेंगे सबके सामने, उनको कोई यही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बंदर हुए ना, बंदर जो होता है बड़ा कामी होता है, बड़ा क्रोधी होता है, इतना क्रोधी होता है कि अगर बंदर आपस में जब लड़ते हैं ना और उनके सामने डंडे डाल दिए जाएं तो वो एक दूसरे को चपट के गट्ठा बन जाता है, गट्ठा गोल गोल घूमता ही चला जाता है, काटते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं और डंडे हाथ में डालते हैं, डंडे भी मारेंगे, बहुत क्रोधी होते हैं। लोभी इतने होते हैं कि अगर चना उनकी मुट्ठी में बंध जाए, वो क्या कहते हैं मटकी में, मटकी में हाथ डाला और चना उसमें मुट्ठी में बंध गया तो वो उसको फोड़ेंगे नहीं, वो हाथ ऊपर उठाए 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 चारों तरफ फिरता रहेगा, इतना लोभी होता है। मोही इतना होता है कि बंदर का बच्चा अगर मर जाए तो बंदरिया है तो बंदरिया उसके चिपकाए चिपटाई रहेगी महीने भर तक, खाकर को सड़ता रहेगा, बदबू निकलती रहेगी तो भी चिपटाई रहेगा, और बंदरिया मर जाए तो बंदर उसको चिपटाई रहेगा, इतना मोही होता है। और अहंकारी इतना अहंकारी होता है, इतना डील डॉल वाला हाथी भी अगर जाएगा ना रास्ते से तो उसको घुड़की मारेगा। ऐसे आज के मनुष्य हो गए हैं, बंदर से भी बदतर। तो बाबा ने आज बोला मैं किसकी सेना लेता हूँ? बंदरों की सेना लेता हूँ, नरक की दुनिया खलास करने के लिए। हाँ
हाँ, वो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत को भाई भाई जी कहते हैं, तो भाई भाई है कि
हाँ?
भाई भाई है कि चार आत्मा की दिखी बोलते ना?
नहीं नहीं, आत्मा कहीं, आत्मा तो है ही सारी भाई भाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की अकेले की बात थोड़ी, वो तो 500 करोड़ सब भाई भाई है।
नहीं, वो जैसे दशरथ के पुत्र थे बोलते।
हाँ हाँ, जो दशरथ के पुत्र है चार दिखाते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो दशरथ कौन से हैं? झाड़ के नीचे कितने बैठे हुए हैं? झाड़ के नीचे चार जड़ें उधर हैं और चार जड़ें इधर हैं, तो चार और चार कितने हुए? और दो बीच में, दस हो गए। ये दसों जब ज्ञान में, बेसिक ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब अंत में राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है। तो अकेली नहीं आती है राम वाली आत्मा, तीन भाई और भी जन्म लेते हैं, वो चारों भाई मिलकर के दुनिया के चार मुख्य धर्मों के बीज हैं। राम सूर्यवंशी देवी देवता सनातन धर्म का बीज, भरत इस्लाम वंश का बीज, लक्ष्मण बौद्ध धर्म का बीज, और शत्रुघ्न क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये चार हैं, तो चारों भाई भाई होंगे ना, लोग गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन भाई भाई तो तब कहे जाए जब एक बाप हो, तो कब की बात है? संगम युग में जब भगवान आते हैं तब ये चारों आत्माएं चार घोड़ों के रूप में प्रत्यक्ष होती है। एडवांस में भी ये चार पहले पहले हैं जो राम को पहले पहचानते हैं, इसलिए एडवांस के आदि में दिल्ली में भी चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और चारों का बाप कौन हुआ? शिव बाबा। और
बाबा ने बोला ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर ओरिजिनल देवता है, और तुम भी ऐसे बनना, कब बनेगा?
ओरिजिनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल पहले होता है, ओरिजिन में होता है, शुरुआत में होता है, या डुप्लीकेट पहले होता है? ओरिजिन माने पैदाइशी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो पैदा होते ही देवता है, और जो देवता बनते हैं वो पैदा होते ही देवता बनते हैं या पुरुषार्थ करने के बाद देवता बनते हैं? वो पुरुषार्थ करने के बाद देवता बनते हैं। इसलिए ओरिजिनल देवी देव जो देवता हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, क्योंकि शिव बाबा जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, किसके साथ आते हैं? तीन देवताओं के साथ आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर।
बाबा मोदी तो पॉइंट में बोले ना कि क्रिश्चियन लोग क्रोधी होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, और क्रोध को अंदर दबा के रखते हैं, वो क्यों?
जो अंदर अंदर क्रोध दबा के रखा जाता है वो खतरनाक होता है, या जो शंकर जी की तरह क्रोध आया और थोड़ी चिरौरी की तो शांत हो गया वो अच्छा होता है?
आया निकाला
वही अच्छा होता है। तुरंत तुरंत कचरा आया, तुरंत तुरंत सफाई कर दी तो वो अच्छी बात हुई ना। अंदर अंदर अगर कचरा रखा तो वो सड़ेगा या नहीं सड़ेगा? सड़ेगा तो बदबू मारेगा। तो क्रिश्चियंस का क्रोध तो बहुत खतरनाक है। और बाबा अगर कोई भट्टी करने के बाद भी शराब पीता है बस सिगरेट पीता है तो उसे देखकर अनदेखा करना चाहिए या समझाना चाहिए? समझाना चाहिए कि बाबा ने मुरली में बोला है जो बीड़ी भी पीते हैं वो विकार क्या छोड़ेंगे? बीड़ी सिगरेट भी नहीं छोड़ सकते, विकार ही नहीं छोड़ेंगे तो देवता क्या बनेंगे? वो देवता नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। और शराब के बारे में तो बोला है शराब का धंधा तो करना ही नहीं है। क्या मछलियों का धंधा कर लो चलेगा, अंडा बेचने का धंधा कर लो चलेगा, क्या ये धंधे चलेंगे? लेकिन शराब का धंधा नहीं करना है। शराब सब विकारों को खींचती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई ऐसा विकार नहीं है जिसको शराब अपने अंदर अपने साथ न खींच ले। तो अनदेखा क्यों करना? ज्ञान में अगर आता है तो उसे समझाना है, यहाँ का स्कूल का तो नियम ही नहीं है, क्या कोई शराब पी करके अंदर आए तो आपका फिर आपको अपमान महसूस होगा, अगर पता लग गया आपके मुंह में से शराब की बदबू आती है तो हम सब मिलके आपको दरवाजे से बाहर निकाल देंगे, फिर आपको बेइज्जती अनुभव होगी, चारों तरफ आपकी हंसी उड़ेगी, इसलिए आप इसे छोड़ दें तो बढ़िया है। समझाना चाहिए, अनदेखी क्यों करना।
बाप का ग्लानी भी तो होगा
है,
बाप का ग्लानी तो ग्लानी होगा।
हाँ देखो, अच्छी जगह जाता है वहाँ ज्ञान सुनाया जाता है और ये शराब पीते हैं, ग्लानी नहीं होगी।
बाबा पौर्णानी धर्म वाले ऐसे क्यों बोलते हैं कि कृष्ण है? तीन है,
है? पौर्णानी धर्म वाले
ऐसे क्यों बोलते हैं कृष्ण तीन है?
कौन से धर्म वाले? प्रणामी,
जो कृष्ण को मानते हैं
प्रणामी धर्म वाले। हाँ, एक कृष्ण को वो भगवान मानते हैं, एक कृष्ण संगम युग का है जो असली है, एक कृष्ण सतयुग में पैदा होता है जिसका नाम कृष्ण पड़ता है, बड़े होकर के नारायण पड़ता है, तो वो भी तीन कृष्ण मानते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने से डागली पढ़ाई बोला जाता है, डागली पढ़ाई बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये अर्थ है कि डाग कुत्ता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुत्ता को कहा जाता है। और कुत्ता क्या करता है? कुत्ता जो होता है वो अकेले एक कुतिया के पीछे नहीं फिरेगा, एक कुतिया के पीछे दस कुत्ते पीछे पीछे फिरते रहते हैं। वो एक कुतिया, जैसे दुनिया में एक वैश्या होती है, वैश्या एक और उसके पीछे जाने वाले कितने? दसियों बीसियों आदमी। तो कुतिया जैसे क्या हो गई? क्या हो गई? वैश्या हो गई। तो बाबा ने डागली पढ़ाई नाम दिया है। जो पढ़ाई भारतवर्ष में अभी चल रही है वो पढ़ाई निर्धारित किसने की? कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? विदेशियों की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है या भारत की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? हैं? विदेशियों की पढ़ाई पढ़ाई। विदेशों में तो ये सिखाया जाता है ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, एक औरत कितने पति बनाती है सारी जिंदगी में? ढेर के ढेर पति बना लेती है, तो कुतिया हुई ना। और उसके पीछे पढ़ने वाले कुत्ते हो गए। तो जो विदेशी पढ़ाई है वो ये सिखाती है कि बेविचारी बनो। भारत की पढ़ाई ऐसा नहीं सिखाती। भारत में तो सती स्त्रियां हुई हैं, एक पति एक जन्म में बना लिया तो फिर चाहे पति मरे ही क्यों न जाए तो भी सारा जीवन कोई दूसरा पति नहीं करेगी, व्यभिचार नहीं करेगी, तो उसे डॉगली पढ़ाई कहा जाता है। गॉड जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो गॉडली पढ़ाई, गॉड गॉडेस कहा जाता है देवी देवताओं को। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, तो ये गॉडली पढ़ाई हुई। राधा कृष्ण गॉड गॉडेस है, देवी देवता है ना, कि कुत्ता कुतिया है।
आज तो पांच पांच साल के नीचे के कन्या भी कन्या को भी बलात्कार हो रहा है ना टीवी में, कितना
बलात्कार की बात छोड़ो, पांच छह साल के बच्चे स्कूल में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को प्यार प्यार करने लग पड़ते हैं। अब वो प्यार की बातें यहाँ ज्ञान में आने के बाद फिर पोता मिल देते हैं बाबा को कि बचपन में हमने ऐसे किया था, वो हमें भूलता ही नहीं। माँ बाप को देखते हैं रात में कि माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चे भी एक दूसरे को सिखाते हैं हम भी ऐसे ही करें, ये खेल हम भी खेलेंगे। तो डागली पढ़ाई का अर्थ समझ लिया। अब ये क्या है, बाबा जब कन्याएं हैं वो बाहर फील्ड में क्यों नहीं सेवा करते हैं? ब्रह्मा कुमारियों में तो बाहर फील्ड में सेवा करती है, आपने देखा नहीं ब्रह्मा कुमारियों में? तो ये क्यों लिखा कि कन्याएं बाहर में सेवा क्यों नहीं करती हैं? हाँ, एडवांस में नहीं करती है, क्योंकि बाहर माने बाहरी दुनिया एडवांस के अलावा, और एडवांस के अंदर इनको तो बाबा ने कहा इंदौर वाले हैं, माने डोर के अंदर रहने वाली है। बाबा ने दुकान बना के दी है, तुम अपनी दुकान पर बैठ करके शिकार पकाओ। उसमें भी भाई लोग जो हैं बाहर से शिकार मार के लाए, कन्याओं को नहीं जाना है, और जो मरा हुआ शिकार है वो कन्याएं बैठ करके उसको पकाएं, तो बहुत मीठा लगेगा। तो फील्ड में क्यों नहीं जाती हैं? सब आत्मा भाई भाई है ना। अच्छा, जिसने पूछा है उससे हम कहें सब आत्मा भाई भाई हैं, तो सब भाइयों के साथ एक चारपाई पर सोएंगे क्या? सो सकेंगे? तो भाई भाई कहां रहे? यहां कन्याओं के लिए लिख दिया सब आत्माएं भाई भाई हैं, और अपने लिए लागू नहीं करेंगे? भाई भाई कहने से भाई भाई हो जाते हैं? हो जाते हैं? नहीं हो जाते? अरे इसके लिए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा बने तब तो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, कि बिना आत्मा बने भाई भाई हैं? पहले आत्मा बन करके दिखाएं तब भाई भाई है। योगिनी माता के विषय में बताएं, उनका पूर्व जन्म क्या है? वो तो अव्यक्तवाणी में ही बाबा ने बता दिया। बाबा ने बताया है, तुम बच्चों ने इन दीदी दादी दादाओं को गुण रत्नों से संगारा है पूर्व जन्म में। क्या थी? जो बेसिक में दीदी दादी दादाएं बैठे हुए हैं उनको गुण रत्नों से संगारा था। जो आदमी किया वो अंत में करेंगे। आदि में गुण रत्नों से संगारा था, अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। हो गया।
और बाबा एक प्रश्न, बाबा मुरली में कहते हैं कि जो जितना तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो उतना ही परम धाम निवासी जल्दी ही बन जाएंगे, जबकि फिर बाबा बोलते हैं कि जो जितना पावरफुल आत्मा रहेंगे वो अंत तक रहेंगे, वो बीज कभी नाश नहीं होगा और इसी शरीर द्वारा कंचन काया बन जाएंगे।
आप
मतलब
आप अभी परम धाम में सेकंड दो सेकंड के लिए निवास नहीं करते हैं?
करते हैं।
तो ऐसे ही है, शरीर यही रहेगा, और शरीर रहते रहते भी हम परम धाम में बुद्धि से रहेंगे, लंबे समय तक भी रहने की प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं है। हाँ,
इसी शरीर द्वारा भी सूक्ष्म शरीर मतलब हमारी अवस्था अंत में ऐसी पक्की बन जाएंगे जो दूसरों में भी प्रवेश करके हम सेवा कर सकते हैं।
हाँ जी,
ये शरीर होते
नहीं थे, नहीं थे, ये एटम बम फोड़ने वाले एटम बम बना के तो रखे हैं, फोड़ते का ही नहीं, फोड़ते हैं नहीं फोड़ते, उन्हें डर लगता है कि हम भी भस्म हो जाएंगे, हम एटमिक एनर्जी का प्रयोग करेंगे तो दूसरा देश हमारे ऊपर प्रयोग कर देगा तो हम ही खलास हो जाएंगे, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। क्या बना तो लिए लेकिन उनको उपयोग करने की हिम्मत नहीं है, तो कैसे आएगी वो हिम्मत? हैं? हर हर बम बम के जो बच्चे होंगे वो उनमें प्रवेश करेंगे और उनकी बुद्धि को प्रेरित करके एटमिक एनर्जी फोड़वाई देंगे।
वो शरीर छोड़ने के बाद कर सकते हैं, शरीर रहते ही
शरीर रहते रहते, अरे अपना ही शरीर छूट गया तो क्या फायदा।
वही तो बोल रही हूं।
हां जी
माता, जब भर्ती नहीं करती हैं डॉक्टर, तो उनके युवा को कैसे खान पान में चलना पड़ता है? अगर कोई भाइयों भाई के युवा को भर्ती नहीं करती है,
भाई ज्ञान में चलता है।
हाँ, भाई ज्ञान में चलता
है, भाई ज्ञान में चलता है और युगल भट्टी नहीं करती है, तो ये देखना है कि युगल घर छोड़ करके बाहर तो नहीं जाती है, घर में ही रहती है, तो पवित्र रहती है या अपवित्र रहती है? हैं?
पवित्र
है, पवित्र है तो उसके हाथ का भोजन क्यों नहीं खा सकते? वो कोई दूसरे आदमी के पास तो जा नहीं रही है, बेविचारणी तो बन नहीं रही है, तो उसके संकल्प तो अभिविचारी के रहेंगे या अभिविचार के रहेंगे? अभिविचार, उसके हाथ का भोजन क्यों नहीं खा सकते? हाँ।
बाबा, कोई अगर एक तरफ ईश्वरी सेवा हो और एक तरफ घर में कोई फंक्शन हो, तो उसमें प्रेफरेंस किसको देना चाहिए?
प्रेफरेंस देना चाहिए अपनी अवस्था के अनुसार। अपनी अवस्था अगर पावरफुल है तो खींचते चले जाओ, अपनी अवस्था ही कमजोर है तो फिर तो हम संग में जाएंगे और रंग में आ जाएंगे, हमारी खुद की ही दिल होने लगी, हम भी शादी करें, ढोल मजीरा बजाएं।
बाबा, जैसे गृहस्थी व्यवहार में, जैसे मैं एक बाप हूँ, मेरे बेटी है जो है स्कूल पढ़ने वाली है, वो लोग खाना बनाती है,
है?
उनका हक का जो खाना है ना बाबा,
किनका?
बेटियों का हक,
अपनी बेटी
जो बनने है,
बेटी का बनाया हुआ खाना। हाँ,
उनका खाना तो हम खा नहीं सकते, खा सकते।
बेटी शादीशुदा है गैर शादीशुदा?
शादीशुदा नहीं है।
शादीशुदा नहीं है। डॉगली पढ़ाई पढ़ने जाती है या नहीं? डॉगली पढ़ाई तो पढ़ने जाती है। तो संघ का रंग कैसा लगता है? डॉग एंड बिचेस, कुत्ता कुतियों का संघ लगता है, तो फिर उसकी वृत्ति कैसी चलेगी, उसके अंदर वाइब्रेशन कैसे चलेंगे, संकल्प कैसे चलेंगे? तो ऐसे संकल्प वालों का फिर भोजन हाथ का बनाया हुआ करना चाहिए। इन हाथों से वाइब्रेशन निकलते हैं और इन आंखों से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। वो आटा मारेगी, चावल पकाएगी, सब्जी काटेगी, तो वाइब्रेशन उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
जाएंगे।
तो ऐसी कन्याओं के हाथ का भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
नहीं,
नहीं खाना चाहिए। कहने के लिए कन्या है, लेकिन दृष्टि से, वृत्ति से, कानों से कन्या है।
पढ़ाई में कहीं एक बार मैंने यह सुना था बाबा, पढ़ाई
क्या
अपने घर की कन्या जो है खाना बनाती है, उसका हाथ का खाना।
पढ़ाई में माने कोई ब्रह्मा कुमारी ने ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन ज्ञान में मनन चिंतन मंथन करिए। जब बाबा डॉगली पढ़ाई पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो जो कन्याएं डॉगली पढ़ाई पढ़ेंगे उनको संकरंग नहीं लगेगा? लगेगा, उनकी वृत्ति खराब होगी, वृत्ति खराब होगी तो दृष्टि भी खराब होगी।
बुजुर्ग महिला खा सकते हैं? बुजुर्ग महिला जो पूजा पाठ करती है उनके खा सकते हैं खाना? बना
जो पूजा पाठ करती है, जो शास्त्र वास्त्र पढ़ती है, वो शास्त्र झूठे पढ़ती है, सच्चे पढ़ती है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार।
मंदिर में जो जोगी माताएं होते हैं ना,
हाँ,
अभी भी नए नए बन गए,
हाँ,
उनका हज का खाना भी।
मंदिरों में जो भी पूजा अर्चना जो कुछ भी होती है वो शास्त्रों के आधार पर होती है ना, शास्त्रों में सब झूठा है, तो उसको फॉलो करने वाले सब झूठे हो गए। माला तो करमे फिरे जीव फिरे राम 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 मुखमा है, और मनुआ तो चाहूंगे से डले, ये तो सिमरन ना।
बाबा, जो जन्म धर्म तो राजा ही करके जो आए हैं, राजा ही जो जन्म लेके आए हैं, जन्म धर्म तो जो राजा ही करके आए हैं, तो कौन सा आधार है? ज्ञान के आधार है, योग के आधार, और दूसरा कुछ आधार है?
ज्ञान के बगैर योग हो सकता है? ज्ञान होगा तभी अच्छा योग लगेगा। या ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान का जानकारी, जानकारी होगी ही नहीं तो बाबा को याद कर सकेंगे? बाबा की जानकारी नहीं है, बाबा की पहचान ही नहीं है, तो जानता पार्टी है कि अज्ञानता पार्टी है? जानता पार्टी, पहले पहले ज्ञान, फिर उसके बाद योग। तो ज्ञान और योग एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान योग होगा जिनमें, वो ही बड़े राजा बनेंगे। ज्ञान और योग की पावर नहीं होगी तो राजा भी उतने बड़े नहीं बन सकते।
बाबा जो ऑर्डर चलाते हैं, कोई है? मानता है, कोई नहीं मानता है।
क्या चलाते हैं?
लौकिक में सपोज हम ऑर्डर चलाते हैं,
ऑर्डर चलाते हैं लौकिक में,
हाँ, कोई मानता है कोई नहीं मानता, तो किस आधार पर?
पूजन की अपनी अपनी प्रारब्ध है। जो पावरफुल है वो अपनी बात मनवा लेते हैं, जो कमजोर हैं उनकी बात नहीं मानते। बहुत से ऑफिस में ऑफिसर की बात ही कोई नहीं मानता, कोई सुनता ही नहीं, हेड क्लर्क की सब पीछे पीछे पड़े रहते हैं। ऑफिसर जो है वो अपनी मस्ती में रहता है, क्लब में जाना, डांस करना, ये करना, वो करना, उनमें बुद्धि लगी रहती है, ऑफिस के कामों में उनकी बुद्धि लगती नहीं है। जो हेड क्लर्क है वो ऑफिसर से पूछे बगैर फाइलें की फाइलें रख देता है और वो आंखें बंद करके साइन करते रहते हैं। तो सत्ता किसके हाथ में हुई? ऑफिस की, हेड क्लर्क के हाथ में हो गई। इसको कहते हैं लाल फीता शाही। और
बाबा ये जो धर्म पिता अंत में प्रत्यक्ष हो, धर्म गुरु अंत में प्रत्यक्ष होकर वही केस करेगा ना, तो आया था तो वो
जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो पावरफुल का मुकाबला करेंगी।
अभी तक तो वो नहीं हुआ,
अभी तक में अभी तक धर्म पिता निकले कहाँ है?
वो कब निकले, निकल कर वो
है? जब कब निकलेंगे? जब तुम त्रेतायु की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तब वो निकलेंगे।
क्लास में बैठने के टाइम ना पूरा शरीर में दबाव हो जाता है।
क्या हो जाता है?
दबाव,
प्रेशर आ जाता है,
है?
दबाव हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, किसी ने दबाया हुआ।
हाँ हाँ, कोई आत्मा जो है आपको जबरदस्ती करती है,
खाली नींद आता है।
हाँ, कहते हैं ज्ञान मत सुनो, सो जाओ। कोई कुंभकर्णी आत्मा होगी वो दबाव दे देती है, आप उससे लड़ाई लड़ो। और क्लास के टाइम में ही खूब लड़ाई लड़ो, आंखें फाड़ फाड़ के बैठे रहो। और
बाबा बाबा, हम लोग का जो मनुष्य का जो भाग्य होता है ना, वो बोलते हैं, सब लोग बोलता है, मनुष्य लोग सब बोलता है कि भाग्य भी दाता लिख देता है हमारा
बाबा।
भाग्य, भाग्य भी दाता लिखता है ना, बोलता है सब लोग। क्या सच में भाग्य भी दाता लिखता है या खुद लिखना पड़ता है?
भाग्य भी दाता तो ब्रह्मा को कहा जाता है
सब शास्त्र में।
भाग्य विधाता ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा प्रवेश करता है, तो शिव बाबा ही भाग्य विधाता हुआ ना। लेकिन सबका, अगर वो भाग्य विधाता है तो सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं बनाता? सबको राजा बना दे, महाराजा बना दे, लक्ष्मी नारायण बना दे, सो नहीं बनाता।
कुछ होने से बोलता है तुम्हारा भाग्य नहीं ऐसे,
तो भाग्य कोई दूसरा नहीं बनाता है, हम अपना भाग्य अपने आप बनाते हैं। अभी संगम युग में सबका भाग्य बन रहा है, हमारा आपका सबका भाग्य बन रहा है। भगवान भाग्य बनाने आता है, कोई क्लास में सो जाते हैं तो भगवान क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा है? भगवान तो प्यार का सागर है, वो तो प्यार से चलाता है, कहता है जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। भाग्य बन रहा है, किसी का भाग्य बिगड़ रहा है।
मुझे तो खाली नींद आता है,
है?
खाली नींद,
खाली
नींद आता।
तो बाबा ने तरीका भी तो बताया है, आप ध्यान नहीं देते मुरली में। बाबा ने तरीका बताया है, एक छोटा सा ड्रापर में सरसों का शुद्ध तेल रख लो और आधा बूंद उंगली में डाला और जब नींद आए तो एक आंख में ऐसे लगा दिया, खूब चरपराहट होगी, नींद उड़ जाएगी, आधा घंटा तक नींद आएगी नहीं, आधा घंटे के बाद फिर भूत सवार हो जाए तो फिर दूसरे में फिर लगा दो दूसरी आंख में, फिर आधा घंटा के लिए भाग जाएगा। ऐसे ऐसे डेढ़ घंटे दो घंटे का क्लास पूरा हो जाएगा।
कितना दिन करेंगे? हैं? कितना दिन करते रहेंगे?
कितना दिन
ऐसे करते रहेंगे?
जब तक वो पीछे पड़ता रहे वो आखिर हार के भाग जाएगा। करेंगे?
हाँ। एक दिन तो किया था।
एक दिन किया बस, आँख शुद्ध हो जाएगी, आँख को नुकसान नहीं होगा, लेकिन शुद्ध तेल होना चाहिए सरसों का।
अच्छा बाबा, कई लोग कहते हैं जब शरीर में किसी तरह से मतलब दाग पड़ जाता है जिसमें नीला हो जाता है शरीर के किसी अंग में, तो लोग कहते हैं इसको किसी मतलब प्रेत आत्मा ने उसको मतलब काटा है ऐसा बोलता है
डायन ने,
और उसमें वो नीला होने के समय में शरीर थोड़ा भारी भी हो जाता है, तो ये होता है मतलब बुरी आत्मा का काटना कि सचमुच ऐसा होता है या कि शरीर का मतलब
किसी को चोट लग जाती है तो नीला नहीं पड़ जाता है?
नहीं, मतलब बिना चोट लगे ही नीला दागे किसी का ये बच्चों ने बोला है कि मेरा
बोला है, बोली हुई बात पे क्यों विश्वास करते हैं? बाबा ने बोला है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। आपने सुना ना किसी से?
मेरा में भी एक बार हुआ।
आपको क्या हुआ?
नीला पूरा दाग पड़ गया था।
कहाँ नीला दाग पड़ गया? कहाँ? गाल में? कहाँ पड़ गया? पीठ में? पैर में? पैर में नीला पड़ गया। आप रात में सो रहे होंगे, हो सकता है किसी ऐसे कीड़े ने काट लिया हो।
नहीं बाबा।
तो नहीं, अरे
हाँ।
भगवान को क्यों दोष देते हैं? बोलते कि भगवान सुख देने वाला, भगवान सुख देने वाला।
वो तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने आसमान बनाया, अल्लाह मियाँ ने धरती बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफदा सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, माने अल्लाह मियाँ ही सब कुछ करता है।
नहीं बाबा, हिंदू धर्म के भी बोलते हैं।
वो मुसलमानों से प्रभावित हैं इसलिए बोलते हैं। जो असली हैं देवी देवता सनातन धर्म के, वो तो कहते हैं कि भाग्य हम अपने आप बनाते हैं। जब भगवान आते हैं, भगवान आते हैं तो कहते हैं जब भगवान आया था भाग्य बांटने, तो क्या तुम सोए हुए थे? तो भगवान इसमें क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करता दूसरे के लिए, सब अपने अपने लिए करते हैं।
अच्छा बाबा, एक बात जो अभी एक प्रेजेंट क्या करना है हमें, कि बेसिक वालों का ज्यादा जोर से सेवा करना है या बाहर के दुनिया जिन्होंने बेसिक भी क्लास नहीं किया उनके ऊपर हमें उनकी ज्यादा सेवा करना
है? खैरात घर से शुरू करनी चाहिए या घर के बच्चे भूखों मरते रहे और बाहर वालों को हम दान देते रहे? क्या करना चाहिए? हैं?
घर से
करना चाहिए ना।
जितने भी लोग हैं बेसिक वाले उन लोगों ने तो प्राय सुन लिया, और कोई तो
प्राय सुन लिया, और जिन्होंने नहीं सुना हो तो जो यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ आए हुए हैं बैठे हैं वो बताएं, क्या एडवांस में आने से पहले उन्होंने सुना था कि कोई शंकर पार्टी है?
नहीं,
नहीं सुना था। अचानक उनके सुना और आ गए?
सुना था हमने
तो, ऐसे है
सुना था पहले।
आप फिर उस समय उनके प्रभाव में थे
तो इसका और ये भी
एक बात है। जब हम बेसिक में आए, हमने बेसिक ज्ञान सुना, बुद्धि में बैठा कि भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाए रहा है, तो हमने दुनिया वालों की सेवा की या नहीं की?
की,
की ना। अपने घर वालों को सुनाया या नहीं सुनाया?
सुनाया।
सुनाने के बाद घर वालों ने अपोजिशन किया तो हमने अपने घर वालों को छोड़ दिया? हैं? नहीं छोड़ा। हमारे घर वालों ने हमको नहीं छोड़ा, हमारा अंदर का दिल भी ये कहता है कि हमको ज्ञान मिला है तो हम अपने घर वालों को दुनिया वालों को भी ज्ञान देंगे। अब बेसिक में आने के बाद हमारा जो ईश्वरीय परिवार बना बेसिक का, उसके चलते हमने ईश्वरीय ज्ञान एडवांस सुन लिया, हमने प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप के पार्ट को पहचान लिया, तो बेसिक वालों को छोड़ दें। लौकिक वालों को नहीं छोड़ा और बेसिक वालों को छोड़ दें, है?
नहीं छोड़ना चाहिए,
नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो धक्का भी दे देते हैं तो हम जान जाते हैं ये तो अज्ञानी है इसलिए धक्का दे रहे हैं, लेकिन हम तो भी उनको छोड़ने वाले नहीं है।
बाबा सुनना ही नहीं चाहते, क्या करें?
तो आपने क्या सबको सुना दिया? आपने सबको सुना दिया?
नहीं,
जो नहीं सुनना चाहते हैं उनको छोड़ दो, जिन्होंने सुना ही नहीं है उनको तो संदेश दे दो। नहीं देना?
देना।
हाँ तो उनको दो।
तो बाबा, तो वो बाहर के दुनिया वाले जिन्होंने बेसिक भी कोर्स नहीं किया तो बीके भी नहीं बने, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना?
अगर परिवार के लोग कोई सुनने वाले नहीं मिलते हैं तो दुनिया वालों को भी सुनाओ, उनमें से जो पूर्व जन्म के होंगे। क्या सिंध हैदराबाद की 9 लाख आबादी थी ना उस समय, उन 9 लाख के अंदर के जो होंगे सो निकल आएंगे, 100 को सुनाएंगे तो 1-2 निकल आएंगे। और 1 घंटा हो गया
अभी टाइम है,
अभी टाइम है, चलो भाई टाइम है। राम भाई तो कहते हैं कि 3 बजे निकलना चाहिए, 3:15 बजे निकलना चाहिए। है
थोड़ा पहले उसके
आगे
घंटा
हो सकता है, 1 घंटा
जाम रहता है,
उससे ज्यादा नहीं।
अच्छा ठीक है ना, अभी बाबा वार्तालाप हो गया, मुरली अभी बहुत टाइम हो गया ना बाबा का, भी तो देखना पड़ेगा।
नाम राम भाई है ना, तो अपने नामा राशि के ऊपर थोड़ी तो दया आएगी ना?
नहीं बाबा, दया तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम बस
आप नामा राशि थोड़े ही हैं।
दादा ज्यादा परीक्षा
आपको ज्यादा परीक्षा आती है तो आप बड़ा इम्तिहान पास करने वाले होंगे। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं उनकी बड़ी परीक्षा होती है, जो छोटा एग्जाम पास करते हैं तो उनकी छोटी परीक्षा होती है। बड़ा एग्जाम पास करेगा तो ऊंचा पद पाएगा या नीचा पद पाएगा? ऊंचा पद पाएगा। आप तो महान है, है? अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है।
जब वो सो रहे होते ना बाबा, कोई ना तो कमजोर से जगाते है, बोला है ना।
चलो ओम शांति।